صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، صلى الله على محمد وآل محمد، وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك، وترك ابتزاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصيرة أو تستفيد بها علما، فإن البصر باب الاعتبار. إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام انسانی حقوق کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اللہ کا حق بیان کیا، جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا مالک ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب تک انسان اللہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کا حق ادا کرے گا. سب سے پہلے امام نے اللہ کے حق کا تذکرہ کیا، جس کو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا. اس کے بعد خود انسان کا اپنا حق، ہماری ذات کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے اپنے سلسلے میں ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو امام نے بیان کیا. اور جب اپنے حق کی باری آئی تو ہم بظاہر ایک ہیں، لیکن ہمارے اندر بہت ساری قوتیں، بہت ساری طاقتیں، بہت سارے اعضاء ہیں. امام نے پھر ایک ایک کا حق بیان کرنا شروع کیا. زبان کا حق یہ جو ہے بیان کر چکا، کان کا حق بیان ہو چکا. آج کی گفتگو ہے کہ آنکھوں کا حق کیا ہے، آنکھوں کا کوئی حق ہے یا آنکھوں کا کوئی حق نہیں ہے. یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ عقل کچھ چیزیں وارد کرتی ہے، یہ جو ہے درآمد کرتی ہے، اور کچھ چیزیں یہ جو ہے برآمد کرتی ہے. درآمد اور برآمد، امپورٹ اور ایکسپورٹ، جو دونوں عقل کے لیے ہے. عقل جب ایکسپورٹ کرتی ہے تو اس کے دو راستے ہیں، دو گیٹ ہیں، ایک زبان اور ایک ہاتھ، تقریر اور تحریر. جو کچھ عقل سمجھتی ہے اسے جب باہر بھیجنا چاہتی ہے، دوسروں تک پہنچانا چاہتی ہے اپنے فکر کو، تو دو ذریعہ ہے، تقریر اور تحریر، زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے. اور جب امپورٹ کرنا چاہتی ہے انفارمیشن کو، اطلاعات کو، معلومات کو، اس کے بھی دو دروازے ہیں، دو گیٹ ہیں، امپورٹ کے بھی دو گیٹ ہیں. ایک کا نام کان ہے اور ایک آنکھ ہے. تو یہ دونوں جو ہیں دروازے ہیں عقل کے، یہ جو باب العقل ہیں. آنکھ بھی باب العقل ہے اور کان بھی باب العقل ہے. کان کے سلسلے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آج گفتگو آنکھ کی. آنکھ کے سلسلے میں امام نے پہلا حق جو آنکھ کا بیان کیا ہے، جیسے کان کے سلسلے میں تھا، وَأَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ، تمہاری آنکھوں کا حق کیا ہے. پہلا حق جو آنکھ کا بیان کیا ہے، فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، جن چیزوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہے آپ کے لیے، اپنی آنکھوں کو اس سے محفوظ رکھیں. یہ آنکھ کا حق ہے. اگر یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے آنکھ کا حق پامال کر دیا. جو جرم انسانی حقوق کا پامال کرنے کا ہے، وہی جرم آنکھ کا حق ادا نہ کرنے کا ہے. وَأَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، جو حلال نہیں ہے آپ کے لیے وہاں پر آنکھوں کا استعمال نہ کریں. وَتَرْكُ ابْتِغَالِهِ إِلَّا لِمَوْضِعٍ عِبْرَةٍ، आखिर कुछ चीजों का देखना हराम है, कुछ चीजों का देखना हराम नहीं है, मगर बेफायदा चीजें, बेसूद चीजें हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट हो रहा है, देख रहे हैं, वो हराम तो नहीं है देखना। फुटबॉल हो रहा है, देख रहे हैं, बाकी इस क्रिकेट को देख करके खेल को आपको क्या मिला, हासिल हुआ कुछ इससे? 3 घंटे की फिल्म या 2 घंटे की, 1 घंटे की फिल्म बैठे देख रहे हैं, खूब, हर फिल्म हराम नहीं है देखना, लेकिन हर फिल्म में फायदा भी नहीं है आपको देखने का है। बहुत से पूछ क्यों देख रहे हैं, ये जो है वो टाइम पास कर रहे हैं। अजीब है, इस इंसान के पास वक्त भी नहीं है। अगर आप किसी, आपने काम क्यों नहीं किया, क्या करें, वक्त नहीं था। चचा को देखने गए थे मिलने, मुलाकात के लिए, और कहां वक्त है भाई, आपके भाई साहब बीमार हैं, अलैकुम सलाम, गए थे उनकी इयादत के लिए, जवाब वक्त कहां है, टाइम कहां है। तो एक तरफ से तो हमें जरूरी कामों के लिए टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं है, भतीजे की शादी में गए थे, वक्त कहां है, टाइम ही नहीं है, टाइम ना होने का शिकवा, दूसरी तरफ से बैठे आप फिल्म देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करें, वो टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो इमाम जब आंखों का हक बयान फरमाते हैं तो उसमें पहला हक तो ये है कि हराम चीजों को ना देखें आंखों से, दूसरा हक ये है कि आंखों से उन्हीं चीजों को देखें जिससे आप बसीरत और इबरत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी आंखों को खामखा जहमत न दें। बहरहाल जितनी देर तक किसी चीज को देखते हैं तवज्जो के साथ, जब देखते हैं, एक दफा यूं ही निगाह पड़ रहे बैठे हुए हैं, नहीं, जब बाकायदा तवज्जो दे के देखते हैं, एनर्जी सर्फ हो रही है ना, एनर्जी सर्फ हो रही, आंखें थक रही हैं। आखिर इस आंख बेचारी से जो आप काम ले रहे हैं, इसको जहमत में डाले हुए हैं, हासिल क्या हो रहा है, फायदा क्या है? तो पहली चीज, अम्मा हक को बसारे का फगज़हु अम्मा ला यहिल्लु लक, अपनी आंखों को उन चीजों से बचाए रखें जो चीजें हराम हैं, हलाल नहीं हैं, और उसका इस्तेमाल ना करें मगर उस जगह पर जहां इबरत और बसीरत हासिल हो सकती है, और तस्तफीदा बिहा इल्मन, या कोई इल्म हासिल कर रहे हैं आप इन आंखों के जरिए से, कोई अहम मालूमात, आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आंखों का इस्तेमाल हो रहा है ना, कोई इल्मी किताब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं वो इल्मी किताब बैठे पढ़ रहे हैं, ईएनटी डॉक्टर हैं देख रहे हैं कि साहब मसाल के तौर के ऊपर फलां चीज जो है वो कान को, अमराज को कैसे इससे हम महफूज रख सकते हैं, इल्म हासिल हो रहा है, ठीक है, वहां पर अपनी आंखों का इस्तेमाल करें। तो आंखों का इस्तेमाल जहां जो चीजें हराम है उन्हें ना देखें, एक बात क्या देखें, ना देखें कौन सी चीजें, देखें और ना देखें दोनों को बयान कर रहे हैं, ना देखें जो हराम है उन्हें ना देखें। अब जो हलाल है उनके दरमियान में भी हर चीज नहीं देखना है। इंटरनेट के ऊपर बैठ गए तो माशाल्लाह बैठ ही गए, आंखों का इस्तेमाल हो रहा है ना, अब इंटरनेट अच्छी चीज है और ये जो है बुरी चीज भी है। आप इंटरनेट से उन चीजों को देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल करें जिससे 3 चीजें इमाम बयान फरमाते हैं, या इबरत हासिल हो सके, या ये जो है बसीरत में इजाफा हो सके, या आपके इल्म में इजाफा हो सके। इसके अलावा फिर इमाम फरमाते हैं फइन्नल बसरा बाबुल एतबार, आंख जो है वो इबरत का दरवाजा है, लिहाजा उससे वही चीजें वारिद होनी चाहिए इस गेट से। दरवाजा किस लिए बनाया गया था, दरवाजा बनाया गया था जो चीजें मुल्क के लिए जरूरी हैं वो इससे लाई जाए, जो चीजें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं वो उस गेट से दाखिल नहीं हो सकती हैं, रोक लिया जाएगा ना उसको वहां पर। तो इमाम ने पहला कदम जो बयान फरमाया वो यही था कि हर चीज जो हराम है उससे निगाहों को बचाना, वाम हक को बसरे का फगज़हु अम्मा, ये इमाम ने ये जुमला कुरान की आयत से लिया है, कुरान मजीद में सूरह नूर, सूरह नूर में ये आयत नंबर 30 और 31 दो आयतें हैं। पहला जुमला इमाम ने वहीं से लिया जहां इरशाद होता कुल लिल मुमिनीना यगुज़ु मिन अबसारहिम, ए मेरे हबीब आप मोमिनों से कह दीजिए कि कुछ मकामात पर अपनी निगाहों को नीचे रखें, हमेशा नहीं, कुछ मकाम, वो कुछ मकामात कौन से हैं, उसे ये जो है मुअय्यन करेंगी हदीसें, रवायतें। आज मैंने खुतबे जुमा में अर्ज किया था ना कि फहम कुरान के लिए एक चीज़ क्या है, हदीसें हैं, रवायतें हैं, एक अक्ल है, एक खुद कुरान है और एक रवायतें हैं। बाद मकामात वो हैं जहाँ बगैर हदीस का सहारा लिए हुए हम माना नहीं समझ सकते। आज बहुत सारे लोग पैदा हो गए अहलुल कुरान, सिर्फ कुरान। वो जो ये जो है सदर इस्लाम में थे, जो है सिर्फ कुरान वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हसबुना किताब अल्लाह का जिन्होंने नारा लगाया था, वो तो खैर एक ये जो है सियासी नारा था, उससे बहस नहीं। आज के ज़माने में बड़े लिखे दानिश्वर हैं, उनका ये कहना है कि जी साहब वो अरे हदीसों में तो बहुत दांव पेच है, हदीसों के चक्कर में कहाँ पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं, अहलुल कुरान कहे जाते हैं। लेकिन वो याद रखें कि ठीक है, बहुत सारी आयतें हैं जो हम कुरान ही की मदद से समझ सकते हैं, तो मैंने खुतबे में अर्ज किया था, लेकिन बहुत सारी आयतें ये हैं कि अगर हदीसों का सहारा न लेंगे तो हम इनको नहीं समझ सकते। यही आयत है قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, मोमिनीन से कहिए कि कुछ मकामात पर अपनी निगाहों को नीचे रखें। वो कौन से मकामात हैं? हुक्म है ना, वाजिब है हमारे पर नीचे रखना, वो तो मालूम तो होना चाहिए। कौन से मकामात हैं वो, ये कौन मुअय्यन करेगा? हदीसें मुअय्यन करेंगी। अलबत्ता जहां औरतों के लिए हुक्म आया वहां चंद मकामात खुद कुरान ने बयान कर दिए, अभी आएगा वो भी। وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, मोमिनों से कहिए कि वो अपनी निगाहों को कुछ मकामात पर नीचे रखें। बंद करने की बात नहीं है, बंद कर ले, बंद नहीं करना है। देखिए निगाह का दायरा जो हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ा दायरा है, इस दायरे को छोटा कर देना है। यूं देख रहे हैं दायरा बड़ा है, ऐसे कर दिया दायरा छोटा हो गया। तो हुक्म यहाँ पर दायरे को छोटा करने का हुक्म है। गस कहते हैं छोटा कर देना, या गुज़ मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी अपनी पाकदामनी की हिफाजत करें, इफ़्फ़त व इस्मत को दागदार न होने दें, बद किरदारी की तरफ न जाएं। ये आयत सूरह नूर की जो नादिल हुई है, आज इत्तेफाक से भी मैंने बताया था खुतबे में कि कुरान को समझने के लिए शान नुज़ूल समझना भी अहमियत है। अर्थात हर आयत के लिए शान नुज़ूल नहीं है, मगर जिन आयतों के लिए शान नुज़ूल है, शान नुज़ूल समझे बगैर ये आयत जो नादिल हुई है, इसका पस मंज़र क्या है? जो कहा गया कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, शान नुज़ूल उसका यह है कि एक अंसार से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने, बहरहाल वो भी ये जो है सहाबी ही है ना, जो जितने हैं सब तो सहाबी हैं हुजूर के ज़माने में, तो एक अंसारी सहाबी जा रहे थे, रास्ते में उन्हें खातून नजर आ गईं। अभी हिजाब का हुक्म आया नहीं था, हिजाब का हुक्म भी आया नहीं था, तो खातून चली आती। आमतौर से उस जमाने में अरब औरतों का था कि अगर सर पे दुपट्टा तो रखती थी, मगर दुपट्टे को एक कान के पीछे डाल लेती थी, ऐसे आज भी बहुत सारी खवातीन आपको दिख जाएंगी। तो इसका नतीजा ये होता था कि गर्दन और सीना खुला रहता था। वो जा रही थी, ये जो रसूल के सहाबी अंसारी बेचारे थे, इनकी निगाह पड़ गई उस औरत के ऊपर। उस औरत के ऊपर निगाह पढ़ने का नतीजा यह हुआ कि चेहरे में कशिश कुछ ऐसी थी कि उसके पीछे खींचते चले गए। अब जो उस पर निगाह टिकी है तो निगाह हटी नहीं रही है। वो औरत गुजर भी गई, वो उसको यूं ही देखते चले आ रहे हैं, टिकटिकी बांधे देख भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, अपना रास्ता भी तय कर रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं, मुंह किए हुए। चलते 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 तंग जो है गली में पहुंच गए। अभी जब तक सामना है तब तक वो देखे जा रहे हैं। तंग गली में पहुंच गए, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि हम कहां पहुंच गए। तंग गली में जो पहुंचे तो अचानक उनका मुंह टकरा गया दीवार से। फिर उधर है ना, सामने तो देख ही नहीं रहे हैं, जा कहां रहे हैं। उस दीवार में कोई तेज धारदार चीज थी, वो उनके चेहरे में चुप गई। अच्छा, इतना महो है उधर कि इसका एहसास भी नहीं हो रहा क्या हो गया यहां। महवियत अजीब चीज है। देखिए, महवियत जब किसी चीज में हो जाती है तो दूसरी चीजों से ये जो है हो जाती है गफलत, महवियत और गफलत। इसीलिए है कि आप तवज्जो किधर रखें। अगर जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा हो जाएगी, दूसरी चीज से आप गाफिल हो जाएंगे। आप देखिए बच्चों के सिलसिले में, बच्चे स्कूल से आए हैं और उनको बड़ी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। मम्मी हाँ बेटा ठीक है, दे रहे, निकाल रहे, खाना निकालने में टाइम तो लगेगा ना, अगर ठंडा हो गया तो गर्म करना है। और बच्चा कयामत किए हुए, और बाद माए बड़ी होशियार होती है, फौरन उन टीवी खोल दिया, कार्टून लगा दिया। अब जब बच्चे ने कार्टून देखा तो चुप, अब मम्मी को परेशान नहीं कर रहा है, अब उसकी सारी निगाह कार्टून की तरफ है। अगर उसका वो कार्टून है जो ये जो है पसंदीदा कार्टून है, अब भूख कहां चली गई? चूंकि महवियत है कार्टून में, भूख से तवज्जो हट गई, तवज्जो हट गई। एक तरफ से अगर महवियत हो जाएगी तो दूसरी तरफ से गफलत हो ही जाती है। बच्चा खेल रहा है, अगर यूं आम हालात में जरा सा खरोच भी लग जाए तो बच्चा चीख चिल्लाना, रोना धोना, घर को सर पे उठा लेता है। खेल में अगर महो है, खून निकल रहा है, जख्मी हो गया है, उसको एहसास ही नहीं है। माँ देख रही, तड़प जाती है देख करके, मगर बच्चे को एहसास ही नहीं कि हमें क्या हो, क्यों? महवियत है खेल की तरफ, गफलत हो गई अपने जख्म से। रवायतों में अगर मिलता है कि अमीर मोमिनीन के पैर में तीर लग गया था और वो तीर जब निकालते थे तो मौला तड़प जाते थे, पैगंबर ने कहा अभी नहीं, जब अली नमाज पढ़े तब निकाल लेना। वो बहुत सारे लोग इस रवायत को ये जो है मखदूश मानते हैं, ये कैसे हो सकता है कि मतलब नमाज में चले जाएंगे तो भी एहसास नहीं रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस नमाज का मजा चखा ही नहीं है, जानते ही नहीं है। इस इंसान ने किसी चीज का मजा नहीं चखा है, उसे आप लाख बयान करें उसके समझ में बात नहीं आ सकती है। लेकिन हकीकत यही है कि जब महवियत एक तरफ हो जाएगी, आयतुल्लाह खुनसारी एक मरजे तकलीद गुजरे हैं जिनको हमने देखा है, हमारी दानिश में वो रहे, इनका इंतकाल हो चुका है, इंतकाल हुए भी तकरीबन 35-40 साल उनका हो रहा है, मगर उनको हमने देखा था, तेहरान में रहते थे। आज तो पता नहीं आप उस जमाने में थे, आपके आने से पहले इंतकाल कर गए थे वो, इंकलाब के बाद उनका इंतकाल हुआ है, इंकलाब इस्लामी के कामयाबी के बाद उनका इंतकाल, तेहरान में रहा करते थे। आयतुल्लाह ये जो है मिसबाह यजदी ने वाकया बयान किया, वरना मैं इसको वाकये को बयान ना करता क्योंकि इसको जरा हजम करना मुश्किल है, मगर चूंकि नाकिल कौन है, आयतुल्लाह मिसबाह यजदी है, इसी से उसका ताल्लुक है। आयतुल्लाह मिसबाह यजदी कहते हैं कि आयतुल्लाह खुनसारी का ऑपरेशन होने वाला था मेदे का, वो मेजर ऑपरेशन है, उनका फतवा यह था कि मर्जा को बेहोश नहीं होना चाहिए, जो बेहोश हो जाए वो मर्जा, मर्जा वो है जो साहेब होश हो, बाहोश मर्जा होता है, बेहोश मर्जा नहीं होता है, मदहोश तो बिल्कुल नहीं होता है। सलाम रहमतुल्लाह, तो उनका फतवा ये था कि वो मर्जा है, तो उन्होंने डॉक्टरों की टीम से कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए मगर हमें बेहोश मत कीजिएगा। हुजूर ये कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत कट थोड़ी लगाना है, पूरा पेट चाक करना है, आंतों को निकालना है, काटना है, कुछ कैंसर उनसर टाइप की चीजें थी उनके मेदे की, उसको छोटा है ऑपरेशन नहीं है, मेजर ऑपरेशन है, कब हुआ करे, जो मैं कह रहा हूं वो करो। खैर एक डॉक्टर अकलमंद था, उसने कहा इनसे बहस करना बेकार है, ठीक है बोलो हाँ सही है, जब चाकू चलेगा तो खुद ही कहेंगे बेहोश कर दो भाई, जब दर्द होगा तकलीफ होगी तो खुद चिल्लाएंगे तब कर देंगे बेहोश। खैर वो तैयारी हो गई, ले गए उनको ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन शुरू हुआ, थोड़ा सा काटा पहले एहतियातन जरा सा करके देखे, कोई असर नहीं, पूरा ऑपरेशन हो गया, घंटा दो घंटा तीन घंटा जो भी ऑपरेशन का वक्फा था वो सर्जरी पूरी हो गई, जो कुछ करना था काट पीट चुके, सी चुके, बखिया हो गया, सबके बाद फिर आगा से कहा हो गया, यानी हो गया। अब डॉक्टर हैरान, भाई इतने सारे ऑपरेशन किए हैं, ऐसा पेशेंट तो आज तक नहीं देखा था। तो डॉक्टर साहब आए कि किबला ऑपरेशन तो हो गया मगर ये आपने कैसे किए ये मुझे बताइए, वो कौन सी दवा पड़ी थी आपने जिसकी वजह से आपको एहसास नहीं हुआ? का कोई दवा नहीं। का फिर कैसे हुआ? का जैसे तुमने ऑपरेशन शुरू किया हमने अपनी तवज्जो खुदा की तरफ मोड़ दी। एक तरफ अगर तवज्जो हो जाए, तवज्जो है कामिल अगर हो जाए तो दूसरी तरफ से गफलत हो जाती है। मैं उधर मुतवज्जे था, इधर का तो एहसास ही नहीं हुआ कि यहां क्या हो रहा है। तो ये एक मर्जा की दास्तान है, जब एक मर्जा का घंटों का ऑपरेशन बगैर बेहोश किए हो गया, उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, तो अगर मौला अली के पैरों से तीर निकाल लिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जो तवज्जो का मेयार अली का है वो तो जाहिर से बात है किसी मर्जा का नहीं ना है। तो तवज्जो ये साहब जा रहे थे, ये सहाबी साहब जा रहे थे, उधर औरत को देखते चले जा रहे हैं, और इधर चले यार, नहीं गड्ढे में नहीं गिरे, जाके वो दीवार से टकरा गए, जाके वो दीवार से टकरा गए। साहबी देना तो गड्ढे में गिरे नहीं अभी। अब जो टकरा गए, अब चुभ गया खूनम खून, इन्हें एहसास ही नहीं। जब वो ओझल हो गई निगाहों से और वहां से तवज्जो हटी, इधर तवज्जो हुई, अब देखा तो पूरा खूनम खून है, पूरा कपड़ा सुर्ख। अरहल गलती तो कर गए थे, मगर उनको अपने ऊपर गुस्सा बहुत आया, बहुत गुस्सा आया कि तुम अहमक, एक औरत के चक्कर में इतने दीवाने हो गए थे, उसको देखने के चक्कर में। उसके बाद के मैं जाके पैगंबर से वाकया जरूर बयान करूंगा, अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह, ताकि पैगंबर की खिदमत में वाकया गया और जाकर के बयान किया। जिधर उन्होंने वाकया बयान किया उधर जिब्रील आयतें लेके नादिल हो गए। ये दोनों आयतें जो हैं लेकर के नादिल हो गए। क्या आयत है? कुल लिल मोमिनीन यगुज़ु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम। उसने हिजाब नहीं किया है, तुम क्यों घूर रहे हो भाई? मोमिनीन से कहिए कुछ मकामात पर अपनी निगाहों को नीची रखें, व यहफ़ज़ु फुरूजहुम, और अपनी इस्मत व पाकदामनी का ख्याल रखें। ज़ालिका अज़्का लहुम, यही उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा बात है। इन्ना अल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन, छुप छुप के अगर झांक के देख लेते हैं तो अल्लाह को सब पता है। इन्ना अल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन, दूसरों को पता नहीं चल सकेगा लेकिन अल्लाह तो जानता है कि आप क्या हरकत फरमा रहे हैं। ज्यादा यगुज़ु मिन अबसारिहिम। वकुल लिल मोमिनात, और मोमिन खवातीन से भी कहिए कि यगुज़ु मिन अबसारिहिन, कुछ मकामात पर वो भी अपनी निगाहों को नीची रखें। व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना, और अपनी इफ़्फ़त व पाकदामनी की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को आश्कार ना करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर वो जीनत जो खुद ब खुद आश्कार है, कि अलबत्ता ये खुद ब खुद को जो लिया गया है चेहरा और हाथ। ये पूरी आयत पूरी सूरह नूर की पर्दे के वाजिब होने के ताल्लुक से है, हिजाब की आयत। बहुत सारे लोग कहते हैं कुरान में कहाँ हिजाब है, ये वाली आयत है, सूरह नूर की आयत है। पूरे पूरे बदन को कवर करें, सर से लेकर के पैर तक कवर करें, सिर्फ चेहरा और हाथ खुला रह सकता है। उसकी भी शर्त यह कि मेकअप ना हो, क्योंकि जीनत पर जीनत आ गई तो जाहिर सी बात है उस जीनत को आपको छुपाना पड़ेगा, वो खुद से नहीं जाहिर है, वो आप जाहिर कर रही हैं। तो ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, और अपना दुपट्टा, खुमर खमार की जमा है, खमार अरबी जबान में उस कपड़े को कहते हैं जो औरतें सर पे रखती थीं। ये जो दुपट्टा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, दुपट्टा पहले कहाँ रखा जाता था? सर पर। अब वो हाथ में लिए रहे या यहाँ पर पड़ा रहे, वो अलग अलग सी चीज़ें हैं, लेकिन असल में क्या था दुपट्टा? सर पे होता था। तो हुक्म हो रहा है कि वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, इस दुपट्टे को सिर्फ सर पे ना रखें, अपने गर्दन और सीने पर भी डालें इसको, अपने गर्दन और सीने पर। पहले बताया ना अरबा औरतों का रवाज था कि वो कान के पीछे ले जाती, इतनी वो कान के पीछे रखती थी, उसका हश्र हो गया इस सहाबी के साथ जो वाकया रुनुमा हो गया। अब उसको इस तरीके से दुपट्टा ओढ़े कि सर भी छुप जाए और साथ में ये गर्दन और ये सीना वगैरह भी पूरा कवर हो जाए। अलबत्ता फिर उसके बाद कुरान कहता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, फिर अपनी आराइश की चीज़ों को जाहिर न करें, मगर चंद अफराद हैं जिनके सामने उनको जाहिर किया जा सकता है, जिनसे हिजाब वाजिब नहीं है। इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, शौहर से हिजाब वाजिब नहीं है। औ आबाएहिन्ना, या अपने बाप दादा नाना, इनसे हिजाब वाजिब नहीं है। औ आबाए बुउलतिहिन्ना, या शौहर के जो बाप दादा हैं उनसे भी हिजाब वाजिब नहीं है। शौहर से हिजाब तो हो सकता है कि एक ज़माना आए कि फिर जो है वाजिब हो जाए, खुदा ना खास्ता खाकम बेदहन अगर तलाक हो गया। बता हम इतना ज़्यादा खुदा ना खास्ता कह रहे हैं, अब आजकल इतना खुदा ना खास्ता रह नहीं गया, लेकिन बहरहाल चूंकि इस्लाम में तलाक एक अमर मबगूज है, नफरत अंगेज अमल है, इसलिए ये जुमला इस्तेमाल करना ही पड़ता है। تو اگر طلاق ہو گیا تو دوبارہ شوہر نامحرم ہو جائے گا, ان سے حجاب واجب ہے, مگر سسر سے حجاب اب بھی واجب نہیں ہے. ان سے ایک مرتبہ جب ہو گئی یہ جو ہے محرمیت, تو ہمیشہ کے لیے محرمیت باقی رہے گی. او آبا او ابنا اے بولت ہننا, یا جو شوہر کے بیٹے ہیں, شوہر کے بیٹے چاہے اپنے بیٹے ہوں یا کسی اور بیوی سے, ان کے پہلی بیوی سے کوئی اولاد ہے, تو وہ بچے بھی ان کے لیے محرم قرار پائیں گے. او اخوانہن, بھائیوں سے جو ہے حجاب پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن, یا جو بھائیوں کے بیٹے ہیں, بھتیجے وغیرہ ہیں, ان سے بھی حجاب نہیں. او بنی اخواتہن, یا بہنوں کے بیٹے جو ہیں, بھانجے, یہ بھی جو ہے محرم ہوتے ہیں, ان سے حجاب نہیں ہے. او نسائہن, اور حجاب واجب نہیں ہے یہ جو ہے مسلمان عورتوں سے. ہاں شرط ہے, ہر عورت سے نہیں, بعض عورتوں سے حجاب کرنا ہے. جو عورتیں یہ جو ہے مسلمان نہیں ہیں, ان سے بھی حجاب ہے. او نسائہن, اپنی آگے نہیں, یہ جو ہے مسلم عورتیں جو ہیں. او ما ملکت ایمانہن, یا وہ عورتیں زمانے میں جو ہے وہ یہ جو ہے کنیزیں ہوا کرتی تھیں. اب کنیزیں چاہے یہ جو ہے مسلمان نہ ہوں, مگر ان سے بھی حجاب نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, کچھ مرد ایسے ہیں جن کے ہاں جنسی خواہش باقی ہی نہیں رہتی ہے, جانتے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں, پاگل دیوانے ہیں مثال کے طور کے, بٹ ان سے بھی حجاب نہیں ہے. یا یہ جو ہے خواجہ سرا ہوا کرتے تھے, ان لوگوں سے حجاب نہیں ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, وہ بچے, بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے, وہ بچے جو ابھی سن تمیز کو نہیں پہنچے ہیں, جو ابھی نہیں سمجھتے ہیں کہ عورت کیا ہے مرد کیا ہے, ان چیزوں سے ان کو اطلاع معرفت اس کی نہیں ہے, ان سے بھی حجاب نہیں ہے. خب اتنے ہیں, بقیہ سب سے حجاب ہے, سب سے پردہ کرنا واجب ہے. اب ہمارے ہاں بہت ساری خواتین وہ جو دیندار ہیں اور باحجاب ہیں, پردہ کرتی ہیں, یعنی واقعی وہ پردے والی خاتون ہیں, لیکن کچھ لوگوں سے وہ حجاب نہیں کرتے, اب کہ ان سے حجاب واجب ہے. مثال کے طور پر بہنوئی, سالی اور بہنوئی میں حجاب واجب ہے, بھابھی اور دیور میں. ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی مولانا یہ تو بالکل جو ہے غضب مت کیجیے, بھابھی تو ماں کا مقام رکھتی ہے, ماں کی جگہ ہے. نہیں, قانون اسلام یہ ہے کہ ان سے بھابھی اور دیور میں حجاب ضروری ہے, سالی اور کزن جو ہیں آپس میں, چچیرے بمیرے خلیرے بھائی بہن, پھپھیرے بھائی بہن, ان کے بھائی بہن کا استعمال ہمارے ہاں کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال اسلام اس کو جو ہے وہ اس بھائی بہن کا درجہ نہیں دیتا ہے جہاں پر حجاب واجب نہ ہو, ان سے بھی حجاب واجب ہے. ہم لوگوں کے عموماً ان چیزوں کا خیال, ارے یہ تو آپ چچی اور بھتیجے میں, چچی اور بھتیجے حجاب وہاں کے اوپر ہے, پھوپھا اور بھتیجی, پھوپھا سے حجاب ہے, خالو سے حجاب ہے. ہاں یہ سب کے سب نامحرم ہیں, کیونکہ جتنے محرم ہیں سب کا تذکرہ یہاں قرآن مجید نے کر دیا ہے کہ اتنے محرم ہیں, ان میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں آیا ہے. یہ سب کے سب جو ہیں وہ نامحرم ہیں, اور ان سے حجاب کا وہی حکم ہے جو عام لوگوں سے حجاب کے لیے کہا گیا ہے. اس کے بعد آخر میں ہے کہ وَلَا يَغْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَا مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. خب عورتیں اپنے پیر میں یہ پازے پائل وغیرہ پہنتی تھیں, تو ان کو کہا کہ پیر پٹک پٹک کے مت چلو, پیر پٹک کے چلیں گے چھن چھن کی آواز آئے گی نا, تو جن کے دل میں بیماری ہے ان کے لیے پریشانی ہو جائے گی. تو مسئلہ صرف حجاب کر لینا نہیں ہے, حجاب کے علاوہ ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا واجب ہے جن سے جنسی جذبات بیدار ہوتے ہیں اور سماج میں اخلاقی برائی پھیل سکتی. بعض خواتین حجاب کرتی ہیں مگر ان کا حجاب ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حجاب کے لیے بھی ایک حجاب ضروری ہے, پورا کور ہے, سب کچھ پورا کور کر لیا ہے, اتنا ٹائٹ حجاب وہ ہے. وہ ہمارے یہاں برقع باز آتا تھا, کراچی والا برقع اور دلی والا برقع اور لاہور والا برقع, اور برقعے ایسے ہیں کہ برقعے کے اوپر ایک برقعے کی اور ضرورت پڑتی ہے. نہیں, یہ حجاب نہیں ہوا. آخر کی جو آیت اضافہ کر دیا کہ इसका भी ख्याल रखना वाजिब है। हिजाब का मतलब ये है कि पूरे बदन को कवर किया गया, वाजिब है, ये वाजिबात में से है, हुक्म कुरान है, सही आयत मौजूद है। इस तरह से सर से लेकर के पैर तक, हाँ बात खवातीन हैं जो पूरा हिजाब कर लेती हैं, पैर का हिजाब नहीं करती हैं, पैर का हिजाब वाजिब है, मोज़ा पहनना पैर में अगर हिजाब कंप्लीट करना है तो उसका भी हिजाब है। बहुत सी खवातीन यानी उनको पता नहीं है, जानती नहीं है, नहीं है कि खुदा ने खासा हुक्म शरीयत के मुकाबले में, नहीं, बड़ी मोमिना हैं, बहुत मोमिना हैं, इबादत गुजार, सारी चीज़ें उनके अंदर हैं, हिजाब भी करती हैं, खास सख्त हिजाब, लेकिन मारफत शायद नहीं है, बयान शायद नहीं होया, हम शायद हम लोगों की कोताही रही कि हम लोगों ने सही तरीके से मसला बयान नहीं किया, वो समझ नहीं पाए। सर से लेकर के पैर तक पूरा कवर करना जो है वो वाजिब है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो आंखों के हुकूक में पहला हक क्या बयान किया, निगाहों को नीची रखें, निगाहों को बचाए रखें उन चीजों से जिसे अल्लाह ने हराम कर, वो पूरी फहरिस्त यहां पर आ गई, अल्लाह ने किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ पर हराम करार दिया है। तो मैंने अर्ज़ किया कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में आँख और कान, आँख और कान ये दोनों जो हैं वो दरवाजे हैं। किस चीज़ के दरवाजे हैं? आँख और कान दोनों दरवाजे हैं बाहर की इत्तलात को अक्ल तक पहुँचाने के लिए। अक्ल को अर्ज़ किया था अभी आप लोग नहीं थे कि अक्ल कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट करती है, कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करने के लिए भी दो गेट है, एक जबान एक हाथ, तकरीर और तहरीर। इंपोर्ट के लिए भी दो दरवाजे हैं, दो रास्ते इंपोर्ट के हैं, एक कान एक आंख है। जो कुछ देखते या सुनते हैं अपने पास, ये कान और आंख दोनों, आंख से देखा कान से सुना, कान और आंख अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, ये जो है जखीरा अंदोज नहीं है। जो इनको हासिल होता है, कान ने जो सुना फौरन पहुंचा दिया अकल के पास, आपकी मर्जी आप जो चाहें इसके साथ करें। आंख ने जो कुछ देखा उसने फौरन पहुंचा दिया अकल के पास, जब अकल की मर्जी है जिस तरीके से इसका चाहे इस्तेमाल करें। जो अकल ने हासिल किया, जो कान ने हासिल किया, जो आंख ने हासिल किया, उससे दिलो दिमाग मुतासिर होता है, अलैकुम, उसका असर पड़ता है हमारे दिलो दिमाग के ऊपर, उसका असर पड़ता है। अगर जो कुछ आंख ने हासिल किया है, कान ने, अगर आंख और कान का माहसल पाको पाकीज़ा है, तैयबो ताहिर है, तो दिलो दिमाग भी तैयबो ताहिर हो जाएगा, दिलो दिमाग भी पाको पाकीज़ा हो जाएगा। अगर आंख और कान ने इल्म अदब और मारिफत हासिल किया है तो जाहिर से बात है कि हमारा, हमारी अक्ल भी जो है वो बराबर होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर जो माहसल है कान और आंख का वो जहर आलूद है, वही मसमूम है, वही आलूदा है, वही नापाक है, तो दिलो दिमाग भी हमारा मसमूम हो जाएगा, दिलो दिमाग भी मसमूम हो जाएगा। अगर जो चीजें हमने हासिल की हैं, अगर वो चीजें वायरस उनके अंदर है, जरासीम है, तो ये वायरस अकल और आंख और कान के माहसल की बीमारी सबब बन जाएगी अकल और दिमाग की बीमारी की। न सिर्फ बीमारी, एक जमाना वो भी आ जाता है कि ये बीमार दिल मर जाता है। कुरान मजीद में खुदावंद मुताल इस चीज को इन लफ्जों में बयान कर रहा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7, किस तरह से दिल जो है बीमार होता है, किस तरीके से दिल ये जो है मर जाता है। बीमार क्यों हुआ है? कंट्रोल नहीं हुआ है, जो ग़िज़ा वारिद हुई है अक्ल की तरफ उसे कंट्रोल नहीं किया गया, जिस्म बीमार हो जाता है। जिस्म बीमार इसलिए होता है, इसलिए कि हमने जहरीली जो है ग़िज़ा खा ली है। लिहाजा आजकल ग़िज़ाओं के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया जाता है, खुसूसन यहाँ के मुल्कों में सुनते हैं कि बहुत कंट्रोल करते हैं, पता नहीं करते कि नहीं करते हैं, सुनते तो बहुत कुछ हैं कि यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, एक साहब नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सरमायादाराना मुल्क से हमें उम्मीद तो नहीं है कि वो कैपिटलिस्टों के हक के खिलाफ, मफाद के खिलाफ कुछ करेंगे। बहरहाल करते हैं तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह करते ही होंगे। तो यहाँ तो जिस्म बीमार ना होने पाए बड़ा अहतमाम किया जाता है, रूह बीमार ना होने पाए इस्लाम ने उसका भी अहतमाम किया है। इसीलिए इस्लाम कहता है कि फना आवाज न सुनो, फना चीज मत देखो। ये कहते नहीं साहब, वो जो है फ्रीडम, कान जो सुनना चाहे उसे सुनने दीजिए, आंखें जो देखना चाहती हैं देखने दीजिए, पाबंदी नहीं लगना चाहिए, सेंसरशिप मना। अरे भाई अगर इतनी आप आजादी के हामी हैं तो ये जो जिस्म वाले खाने हैं इनके लिए भी तो आजादी दे दीजिए, जिस्म की गजा के लिए तो वहां के ऊपर ये जो है फ्रीडम भूल जाते हैं। भैया कोढ़ी आकर के होटल खोल लेता है, कोढ़ी होटल खोल, लिख भी दिया उसने कोढ़ी का होटल, अब जिसकी मर्जी है खाना खाए, जिसकी मर्जी है खाना ना खाए, आपकी आप आजादी है भाई। अफनी साहब ये तो कराची की नहारी यहां मिल रही है, वो कोढ़ी से ही जाएंगे तो जरूर, कहां मिलती है आसानी के साथ। हुकूमतें आया इस कोढ़ी को होटल खोलने की इजाजत देंगी, देंगी इजाजत नहीं देती ना, नहीं नहीं आप नहीं खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते हैं? आपकी बीमारी दूसरों को लग सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं। अरे भाई आजादी है, फ्रीडम है, लिबरल आप मगर आप नहीं है, ये जो है लिबरलिज्म है, जो जिसका मर्जी जो चाहे खाए। हमने तो लिख दिया ना, हम कहते धोखा भी नहीं दे, हमें लिख दिया कोढ़ी का होटल का नहीं, चूंकि लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे भाई कुछ लोग हाथ पैर के कोढ़ी होते हैं, कुछ अक्ल के कोढ़ी होते हैं। अक्ल का कोढ़ी अगर कोई फिक्र पेश कर रहा है, मसमूम फिक्र, उस पर अगर पाबंदी लगाई जाए तो आप आजादी और लिबरलिज्म और इंसानी हुकूक और ह्यूमन राइट सारी फरियादें क्यों करते हैं? इमाम खुमैनी ने अगर सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दिया था, इसलिए फतवा दिया था कि वो अक्ल का कोढ़ी है। जिस्म के कोढ़ी के खाने के ऊपर तो पाबंदी है, और अक्ल का कोढ़ी जो गजा रूह के लिए फराहम करता है। आज हम लोग भी अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, बच्चे अगर कोई खाना घर में रखा हुआ है फ्रिज में 3-4 दिन का खाना है, नहीं सड़ गया फेंको फेंको फेंको, सड़ा नहीं है वाकई, शक हो गया है, खाने देते हैं बच्चों को, फला आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद है, मगर आपको पता चल गया कि वो आइसक्रीम में ये जो है जरासीम पाए जाते हैं, आलूदा है, अपने बच्चों को खाने देते हैं, नहीं ना खाने देते हैं। ग़िज़ाए जिस्म का इतना ख्याल है और ग़िज़ाए रूह का ख्याल, बच्चा क्या पढ़ रहा है कभी देखा आपने? बच्चा क्या सुन रहा है कभी देखा आपने बैठ करके? नहीं नहीं नहीं, वो बच्चों के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, बच्चों को तो फ्रीडम दे देना चाहिए, इंटरनेट पे लगा के दे दिया, सब कुछ दे दिया, जो चाहे आप करें, आपकी अपनी मर्जी। तो यही आजादी खाने में भी दे दो ना भाई। मौलाए कायनात इसी दर्द को बयान फरमाते हैं कि मैं देखता हूं कि जब किसी के सामने रात में खाना ला करके पेश किया जाता है अंधेरे में, तो फौरन खाने नहीं लगता है, बल्कि पहले चिराग जलाता है ताकि देखे क्या खा रहे हैं। उन्हें फिक्र इस बात की है कि अपने पेट को खराब गजाओं से आलूदा ना होने दें, लेकिन जब मामला रूह की गजा का आता है तो आंख बंद करके उसे खा लेते हैं। ला यहतमूना बेगजा इन नफ्स बेअई युनीरू मसाबीहा अलबाबिहिम बिलइल्म, उस गजा के इस्तेमाल से पहले इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते कि चिराग अक्ल को नूर इल्म से रोशन कर लें, फिर उस गजा को हासिल करें। वक्त खत्म हो गया, खुदा वंदे आलम से दुआ है कि खुदा हमें तौफीक दे, जिस तरह से हम गजाए जिस्म को अहमियत देते हैं वैसे ही गजाए रूह को भी अहमियत दे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الفلاح، حيا على خير العمل، حيا على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا، واجعلني إن قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا، برحمتك يا أرحم الراحمين.